وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑوں کو، یہ اوپر اوپر نہیں پڑے ہوئے، یہ زمین کے اندر ہیں، گڑے میں ہیں، اَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ ڈگمگا جائے گی تمہارے ساتھ، کہ یہ نہ ہو کہ یہ زمین ڈھلک جائے تمہیں لے کر، بیکاز یہ جو زمین تھی نا یہ اتنی زیادہ ایسی تھی کہ جب بنائی اللہ تعالیٰ نے تو یہ اتنی زور سے ہلتی تھی، اس کے اوپر رہنا پاسبل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جیسے میخیں گاڑ دیتے نا آپ کیل ٹھونک دیتے، اس طرح کیل کی طرح پہاڑوں کو ٹھونک دیا اس کے اندر، تو اب یہ زمین سٹیبل ہو گئی. اب آپ نے جب انشاءاللہ کسی جگہ پہ پہاڑ دیکھنا ہے تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے اس کو گاڑ دیا کہ زمین پہ زلزلے نہ آئے، ورنہ زمین ہلتے نہ تھا ہم نے کیسے یہاں پہ رہنا تھا. پتہ ہے کئی چیزوں کا نا ہمیں احساس نہیں تھا، کبھی ہم نے تھوڑی کبھی پہاڑوں کے اوپر شکر ادا کیا، اللہ پہاڑ بھی ہیں تیرا شکر ہے، نہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے پھر ہمیں خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح سے نہیں ہم کہتے کہ ہم کو دیکھ کے بھی ہمارے اندر کوئی شکر گزاری کا احساس ہو. اصل میں ہمیں شکر گزاری اکثر تب آتی ہے جب ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی نا، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑی نعمت تھی. اب یہ کووڈ کے دنوں نے ہمیں سکھا دیا کہ دیکھیں اس نعمت کی بھی ہم نے کبھی شکر گزاری نہیں کی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ملنے میں مسئلہ نہیں ہے. جب کووڈ آیا تو اللہ اکبر آپس کے اندر رشتے دار بھی ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے تھے، دوست احباب دور دور سے ایک دوسرے کو کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگے تھے، انسان انسان سے خوف زدہ ہو گیا تھا. کتنی جگہوں پہ میں نے دیکھا غیر مسلموں نے بھی لکھا ہوا کہ ہم کووڈ کے بعد ہماری سب سے بڑی کیا خواہش ہے کہ ہمارے بچے اپنے دادا دادی سے ملے، نانا نانی سے ملے، اپنے گرینڈ پیرنٹ سے مل سکے، گرینڈ پیرنٹس نے لکھا ہوا ہم اپنے گرینڈ چلڈرن کو دیکھ سکیں، ایٹ لیسٹ ان کو ہگ کر سکیں. ہم نے کبھی اس نعمت کا آج تک شکر ادا کیا تھا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ نعمت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو بے شمار نعمتیں ہیں آگے جن کی بات آ رہی ہے، وہ انہارن اور نہریں، وہ سبن اللہ اللہ کم تعتدون، اور راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دی. لیکن زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ بس سپاٹ ہے، اس کے اندر کوئی راستہ ہی نہ ہو، پہاڑوں کے بیچ میں بھی نہریں بھی ہیں اور نہروں کے ساتھ ساتھ راستے بھی جا رہے ہوتے ہیں پانی کے. آپ دیکھتے ہیں نا چشمے ہوتے ہیں کئی جگہ سے پانی جا رہا ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت، تاکہ تم ہدایت پاؤ. کیونکہ راستہ جو ہے جب انسان راہ پا لیتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہدایت کے سامان ہے ہمارے لیے، ان سے ہدایت ملتی ہے. وہ علامات، اور علامتیں رکھ دی ان زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے نیچرل علامتیں رکھ دی. ایسا کوئی جگہ پہ آپ ایسے نہیں جائیں گے کہ بالکل جیسے مثلا صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے نا، اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی راستہ نہیں ہوتا. اب کیا ہے، ایک سپاٹ زمین ہے، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں چلنا کتنا مشکل ہے. اسی لیے تو بنی اسرائیل 40 سال تک وہیں گھومتے رہے، اسی صحرا کے اندر وہاں سے جاتے تھے اور صبح سے چلتے تھے شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے، راستہ ہی نہیں ملتا تھا. اسی طرح ساری زمین اگر ہوتی تو ہم نے تو کہیں پہنچنا ہی نہیں تھا. اب ان چیزوں کی بھی ہمیں قدر اس لیے نہیں ہے نا کہ ہم تو روز راستوں سے جاتے ہیں، روز ہی اس کو دیکھا ہوا ہے، سجی سجائی ہمیں ہر چیز مل گئی بھی ہے، ہمیں کہاں یہ پتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ راستے ہی نہ ہوتے، ہم کیسے جاتے پھر، ایسا نہ ہوتا کہ پہاڑ ہی نہ ہوتے، اندر ان کے پانی کے راستے نہ بنے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علامات رکھ دی، کئی علامات رکھ دی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے اللہ نے اور کئی نشانیاں رکھ دی. اللہ اکبر. وبالنجم، اور سات ستاروں کے، ہم یہتدون، وہ ہدایت پاتے ہیں، ستاروں سے راستے پاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگا دیا، یہ چمکتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں، ہمیں خوبصورتی بھی لگتی ہے اور ان سے آپ راستہ بھی پاتے ہیں سمندروں اور صحراؤں میں. ام یخلق کمن لا یخلق، اب یہ ساری باتیں کہہ کے کیا فرمایا. اچھا ایک سوال ہے، اس کا تو بتاؤ، اس کا جواب تو دو، کیا وہ جس نے پیدا کیا، سب کچھ کو اسی نے پیدا کیا نا، وہ جس نے پیدا کیا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہ پیدا کیا؟ एक वो है जिसने सब कुछ ये पैदा किया, कितनी सारी नेमतों का यहां जिक्र किया, और इसके अलावा भी हर चीज को जिसने पैदा किया। अब सवाल ये है, तुम तो किसी और को जाके पूछते हो, तो ये पैदा करने वाला और जिसने ना, जो पैदा ही ना कर सके, दोनों बराबर हो सकते हैं? मुशरिकीन तो मानते ही थे कि उनके माबूदों ने तो कुछ नहीं पैदा किया, तो उनको कहा गया कि बताओ कि वो उसको फिर तुम अल्लाह के साथ खड़ा कर दो, अल्लाह के बराबर ले आओगे? वो तो पैदा कर भी नहीं सकते, और बल्कि खुद पैदा हुए हैं, तो खालिक और मखलूक क्या एक जैसी हो सकती है? उनको किसी ने पैदा किया ना, वो मखलूक है, खालिक नहीं है। खालिक और मखलूक एक जैसे हो सकते हैं? बराबर तो दूर की बात है, किसी दर्जे में भी वो खालिक की तरह नहीं हो सकते। और इवन कोई भी नहीं हो सकता, कोई कितना ही बड़ा औलिया अल्लाह हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, वो सब मखलूक है। वो कितनी भी बुजुर्ग हस्ती हो, लेकिन वो खालिक नहीं है। अफला तदक्करून, फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते, फिर उनके पास जाते हो, फिर उनसे मांगते हो, फिर उनको कुछ समझते हो? अल्लाह ताला के रहम जैसा मखलूक का रहम नहीं हो सकता, अल्लाह की कुदरत जैसी मखलूक की कुदरत नहीं हो सकती, अल्लाह ताला के इल्म जैसा मखलूक का इल्म नहीं हो सकता। किसी दर्जे में भी मखलूक अल्लाह की किसी सिफत के जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला लैसा का मिसली शई उन, लैसा का मिसली शई उन, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो फिर किस तरह से तुम औरों को साथ बिठा देते? हम जब कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि हम एक कमरे के अंदर कुछ लोग बैठे हैं तो हम कहें ये वाला सबसे बड़ा है, ये नहीं है मतलब। क्योंकि जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर है, तो अल्लाह ताला की बड़ाई इस तरह से नहीं कि अच्छा ये सारे हैं, ये भी बड़े हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा अल्लाह है, नहीं, बल्कि अल्लाहु अकबर, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है दूसरों के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं। खालिक की जो बड़ाई है और मखलूक की, उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं हो सकता। ठीक है, वो इतना बड़ा है कि उसकी बड़ाई का कोई तसव्वुर भी हमारे ना जहन में नहीं आ सकता, उसकी बड़ाई का कोई जरा सा भी तसव्वुर। और जितने अंबिया औलिया सब मिल के भी वो मखलूक ही रहेंगे, चाहे वो कितने ही ऊपर पहुंच जाए, खालिक तक नहीं पहुंच सकते, वो खालिक नहीं बन सकते। वो इतना बड़ा है, उसकी बड़ाई का तसव्वुर हमने क्या करना है? हम तो उसके अर्श का ही तसव्वुर नहीं कर सकते, उसका अर्श कितना है दुनिया के मुकाबले में, दुनिया कह रही हूं कायनात के मुकाबले में। कायनात से पता है आपको क्या मतलब है? ये सारे जितने सितारे, सैयारे, ये कहकशाएं, जो गैलेक्सीज हैं, ये सब मिलके कायनात बन जाए। ठीक है, आपको अपनी भी जरा थोड़ा बता दूं, अपने हालात भी जरा सुन लें, कि इस जो बहुत बेशुमार गैलेक्सीज हैं, उनमें अरबों खरबों सितारे हैं, अरबों खरबों सितारे हैं, ट्रिलियंस, वो कहते हैं ट्रिलियन, साइंसदान कहते हैं गिन नहीं सकता इंसान। अगर हर सांस के ऊपर एक सितारा गिनने लगे, ये साइंसदानों ने लिखा, तो इंसान मर जाएगा, लेकिन उससे नहीं सितारे गिने जाएंगे। ये एक गैलेक्सी में अरबों खरबों हैं, और बेशुमार गैलेक्सीज हैं, और उन हमारी गैलेक्सी के अंदर एक हमारा निजामे शमसी है, जिसका छोटा सा, बड़ा नहीं है, ये दूसरे सितारों के मुकाबले में बड़ा नहीं है, सूरज एक छोटा सा सितारा है। ठीक है, स्टार एक स्मॉल, बहुत छोटा सा सितारा है, इसको स्टार कहते हैं। ठीक है, इस हमारे निजामे शमसी में प्लैनेट्स हैं ना? अब कोई बड़ा कोई छोटा, इनमें एक हमारी जमीन, एक मामूली सा प्लैनेट है। अब इंसान की देखें हिम्मत और इसकी कमजोरी का हालत क्या है, कि अभी तक इंसान का कदम अपने करीबी प्लैनेट मार्स पे भी नहीं पड़ा, जो सबसे करीबी है। बड़ा तीर मारा इंसान ने, चांद पे कदम रख लिया, चांद तो कुछ भी नहीं है। अभी ये जो हमारा निजामे शमसी है ना, ये जो पूरा हमारा सिस्टम है जिसमें हमारे प्लैनेट्स और सूरज है, इसके बारे में साइंसदान कहते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है इसके इस कहकशां के एक कोने पे पड़ा हुआ है, एक जर्रे के बराबर है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। इस जर्रे इस पूरी कहकशां में एक जर्रा है, पूरा हमारा निजामे शमसी, इसमें हमारा सूरज भी, हमारे ये जितने चांद हैं हर प्लेनेट के, वो सारा कुछ उसमें एक जर्रे के बराबर हमारी जमीन, उसमें एक जर्रे के बराबर हमारा मुल्क, उसमें एक जर्रे के बराबर हमारा शहर, उसमें एक जर्रे के बराबर हमारा घर, कहीं नजर भी ना आए उसमें एक जर्रे से भी छोटी हमारी हैसियत। ये इतनी सी है हम, ता जो जिसका निजामे शमसी इतना छोटा है वो इंसान क्या औकात क्या, जिसकी जमीन ही एक डॉट से आगे नहीं है। ये उन्होंने कहा ये आपका निजामे शमसी है ऐसे है जैसे साहिल समुद्र की पर रेत का एक जर्रा पड़ा, इतने छोटे और हकीर हैं आप। तो आपने और कहकशाओं में क्या जाना, आपने और बिना कतार समावाती वाला अर्थ कहां जाना है, आपने किनारों पे आसमान और जमीन के, आप तो यहां से ही नहीं निकल सके। तो अब आप मुझे बताइए इस में जहां पे एक डॉट की हैसियत भी नहीं है हमारे इसकी, कि कहकशां कितनी बड़ी होगी सोचे, और इतनी और कितनी कहकशाएं हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं। अब ये सारी कायनात बन गई ना, इस कायनात की हैसियत अल्लाह ताला के अर्श के आगे कितनी है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक लखो तक सहरा है, बहुत बड़ा दूर दूर तक सहरा है, उसके अंदर एक छल्ला पड़ा हुआ है, एक अंगूठी या एक हलका कह दें आप, वो पड़ा हुआ है। जैसे ये हलका है ना, जैसे इसकी निस्बत है सहरा से, इसका रेशो आप देख लें, इसकी इसका साइज या इसकी हैसियत देख लें सहरा में क्या है, इस तरह ये पूरी कायनात की अल्लाह ताला के अर्श के मुकाबले में है। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, जिसका अर्श इतना बड़ा हो वो जात कितनी होगी, और उसको उसका कंपैरिजन कर रहे हैं मखलूक से, जो खुद बाथरूम जाते हैं और फिर मर जाते हैं और फिर कब्रों में उनको दफनाते हैं, और उनको गुसल देने के लिए भी उनके पास कोई ताकत नहीं होती, वो अपने आप को खुद भी गुसल नहीं दे सकते, उनको गुसल भी कोई दिला रहा होता है। अब कह रहे ना हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो बुतों की बात हो रही है, ये थोड़ी इंसानों की, तो वो बुत कहां से आए भाई, बुत भी तो इतने वो पागल नहीं थे कि बस बुत बना के तो उनके आगे खड़े हो जाते, वो भी तो उन्होंने नेक इंसानों के ही बुत बनाए हुए थे, पीछे तो इंसान ही थे, पीछे तो शख्सियात ही थी जिनकी वो पूजा करते थे। तो इन इस इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं, वो कैसे उस रब का मुकाबला कर सकता है, कुछ कोई मुकाबले की बात ही नहीं इसमें। तो इसलिए शिर्क ये भी है कि अल्लाह ताला के जो लायक शान सिफात है उनको आप मखलूक में समझना शुरू कर दें, कि मखलूक भी किसी ना किसी दर्जे में तो वो भी हमारे काम बना सकते हैं, किसी ना किसी दर्जे को तो उनको भी इल्म-ए-गैब है, किसी ना किसी दर्जे में तो उनके पास भी ताकतें हैं, तो तब शिर्क ही हो गया। याद रखें खालिक अलग है और मखलूक अलग है, कभी भी इस गुमराही में ना पड़े। जिनको नहीं पता वो ना जाने, जिनको पता है उनको बता देती हूँ, ये जो वहदतुल वजूद का अकीदा है इतना गुमराही का अकीदा है, हालांकि कैसे है कि खालिक और मखलूक एक हो जाए, कैसे हो सकता है कि कायनात और अल्लाह एक ही है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि वो अल्लाह तआला में अस्तग़फिरुल्लाह वो मर्ज हो जाते हैं, उसमें जम हो जाते हैं, और ऐसे ये क्या अकीदे हैं, ये तो गुमराही है। खालिक अलग है मखलूक अलग है, मखलूक कभी खालिक के अंदर जम नहीं हो सकती, मखलूक कभी खालिक तक नहीं पहुंच सकती। आप हालात तक कर लू तुम नसीहत नहीं पढ़ करते। और ये अब क्लाइमेक्स आयत आ गई, क्लाइमेक्स आयत आ गई जो हम सूरह इब्राहिम में भी पढ़ चुके हैं ये आयत, और ये वो बात है जो कि आपको सारी नेमतें बता दी गई ना, सारी तो नहीं मतलब चंद एक नेमतें बता दी गई ना, अब बता दिया गया कि नेमते तो इतनी हैं कि इन ताउद्दु नियमत अल्लाह ला तुहसुहा, तुम तो गिन ही नहीं सकते नेमतों को, इतनी नेमते हैं गिना गया है, हमें तो पता भी नहीं नेमतों को गिने गिनेंगे कैसे, और जब ना पता है ना गिन सकते हैं तो आगे उसका शुक्र तो क्या से अदा करेंगे, शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। तो बड़े बड़े तुमने आज कंप्यूटर भी लगा लिए है ना, वो सारे कंप्यूटर भी नेमतों को नहीं गिन सकते। अब ये देख लेना जैसे मैंने अभी आपको बताया कोविड में ये जो सोशलाइजिंग की, एक दूसरे से मिलने जुलने की नेमत थी, वो हमें थोड़ी पता था, हमने क्या शुक्र अदा करना था, तो हमने तो गिनना भी नहीं था क्योंकि हमने आज तक पता ही नहीं उस नेमत, पहाड़ों की नेमत का पता था कि पहाड़ भी कोई नेमत है, इनका कभी शुक्र अदा किया नहीं, मुझे तो एहसास भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। हमारे अपनी जान के अंदर, हमारे अंदर जो सब कुछ निजाम चल रहा है उसमें हमें कितनी नियमतें मिली हैं, हमें तो उनका पता ही नहीं। और दिमाग चल रहा है तो वो चल रहा है, हमें क्या पता ये किस किस तरह चल रहा है, कैसे इसको सिग्नल जाते हैं, सांस चल रही है तो उसका क्या निजाम है, मुझे क्या पता। तो मैं इस नेमत को कैसे गिनूं और कैसे शुक्र अदा करूं। तो शुक्र, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर नेमत एहसान है और हर एहसान पे शुक्र गुजारी करना जरूरी है। तो जब नेमतें ही लातादाद हैं, इतनी हैं जिनका हमें पता ही नहीं, तो अब आप अंदाजा करें कि फिर अगर पता ही नहीं शुक्र कहां से होगा, तो हम तो सारी जिंदगी शुक्र नहीं अदा कर सकते, फिर नहीं अदा कर सकते। अगर जब से पैदा हुए मौत तक हम एक लम्हा भी शुक्र से खाली ना हमारा रहे, तब भी हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते। इसलिए कि नेमतें हर लम्हे में ना, ऐसे नहीं कि हमें एक नेमत मिल रही है, हर हर सेकेंड, मिली सेकेंड के अंदर भी हमारे पर करोड़ों लातादाद नेमतों निछावर हो रही हैं, लातादाद। मैं अब इसकी डिटेल में अगर छाऊं तो ये तो एक आयत ही मैं सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। कितनी नेमतें हैं जो हमारे, इस वक्त मैं बैठी हुई हूं, इस वक्त मेरे पर कितनी नेमतें हैं, खुद सोचें आप, क्या एक नेमत ही है इस वक्त आपके पास? बेशुमार, तो करोड़ों तो हमारे अपने जिस्म के अंदर ही चल रही हैं, उसके अलावा हमारे इर्द गिर्द है। ये तो नेमतें अल्लाह ताला ने इतनी अता की, और सूरह इब्राहिम में हम पढ़ के आए हैं यही बात, इन ताउदु नेमत अल्लाह हिला तो सुहा, लेकिन उसके बाद वहां पे क्या है और यहाँ पे क्या है। देखिए, दो जगहों पे कुरान पाक में ये बात आई है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे इन्नल इंसान लज़लूम कफार, इंसान तो बड़ा ही जालिम, बड़ा ही नाशुक्रा है, इनकार करता है अल्लाह की नेमतों का, मानता ही नहीं। और यहाँ पे क्या है, इन्नल्लाह लगफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। यानी आप देखिए व्हाट अ ब्यूटी, कि एक जगह पे कुरान में ना बात की है रिसीविंग एंड की, लेने वाले की, और दूसरी जगह यहाँ पे बात की है देने वाले की, एक तरफ लेने वाला एक तरफ अता करने वाला। अब लेने वाले का रवैया वहां बताया और देने वाले का रवैया यहाँ बताया, अल्लाह अकबर। अब रवैया होना क्या चाहिए था कि कयामत तक भी तुम लगे रहो तो गिन भी नहीं सकते जिस मौसम के एहसानात तुम्हारे पर इतने ज्यादा हैं। तो तुम सोचो कि फिर इन रिटर्न तुम्हें कैसा होना चाहिए था, इतने एहसानात जिसके हों उसके साथ तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए। अब दुनिया में भी तो आप लेन देन करते हैं ना, आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं, वो आपके साथ क्या करता है आपको सब पता है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे, दूसरा मेरा एहसान मान लो अगर वो थोड़ा आंख उठा के बात कर ले, बेतवज्जो ही कर ले, तो आपको कैसा फील होता है, कितना गुस्सा आता है, और आप कहते हैं आइंदा मैंने नहीं इसके साथ कोई एहसान करना, देखो इसको ये इसने एहसान मंदी का मुझे सिला दी, और गुस्सा भी आता है, आइंदा के लिए तौबा भी कर लेते हैं आप एहसान करने से। तो यहां पे देखें, जो अता करने वाला है, जो देने वाला है, होना तो ये चाहिए था कि तू जलूम और गफार है तो चला जा, अब तुझे भी नहीं कोई नेमत मिलेगी। लेकिन जो इतनी नेमतें दिन रात हर सेकंड में दिए चले जा रहा है, दिए चले जा रहा है, दिए चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, हर लम्हे दे रहा है, इतनी कि जो गिनती में ही नहीं आ सकती, वो कैसा है? वो तुम इतना शुक्र नहीं भी अदा करते या नहीं भी कर सकते तो वो बंद नहीं करता नियमतों को, वो फिर भी गफूर रहीम है, वो फिर भी गफूर रहीम है। क्योंकि अगर वो तुम्हें पकड़ने लगता कि तुम उसकी नाशुक्री कर रहे हो, तुम्हें तो होना ये चाहिए था कि अपनी जिंदगी दे देते उसको, तुम्हें होना ये चाहिए था, एला तो इतनी नेमतें मेरे ऊपर, मेरी सारी तवानाइयां तेरे लिए, मेरी कुव्वतें तेरे लिए, मेरा इल्म तेरे लिए, ऐ अल्लाह मेरा हर लम्हा तेरे लिए, उसने तो ऐसा मुंह फेरा कि उसने तो तवज्जो ही देनी नहीं गवारा की, उसने पहचानना ही गवारा नहीं किया कि मुझे नेमते देने वाला कौन है। वो तो दूसरों के दर पे जाके झुका, वो तो उनके गुण गाने लगा। कितनी बेइंसाफी की इंतहा है कि खाए किसी का और गुण गाए किसी और के, ले किसी से और तारीफें किसी और की करे, रहता बसता किसी की जमीन पे हो और चर्चे किसी और के, माथे कहीं और टेके, जुबान के ऊपर गुण किसी और के हो। अब होना तो यही चाहिए था ना कि सब कुछ खत्म कर दिया जाता, कभी इसको कुछ ना दिया जाता ऐसे नाशुकरे को। लेकिन वो गफूर और रहीम है, होना तो ये चाहिए था कि तुम बिच बिच जाते, कभी सर ना उठाते, कभी आगे से चू ना करते, कोई तकलीफ भी आती तो कहते जो मिजाजे यार में आए, तू राजी तो मैं राजी, मैं क्या चीज, कभी लब पे शिकायत ना आती। लेकिन हुआ इसके उलट, कभी जुबान शिकायतें करना बंद ही नहीं करती, शिकवों के अंबार है, नाशुक्री की इंतहा कर दी इस इंसान ने, उठते बैठते नाशुक्री। तारीफें की तो लोगों की, इंसानों की चीजों की, लोगों के टैलेंट्स की, लोगों की किसी सिफत की ना की तारीफ तो उस रब की ना की। लोगों से कहा जी आपका ताबेदार मैं आपका गुलाम, ना कहा तो अल्लाह को ना कहा, झुका तो दूसरों के आगे झुका, उसके आगे ना झुका। जान पहचान की इल्म लिया तो हर दुनिया की चीज का ले लिया, उसके बारे में ना सोचा, उसके बारे में ना इल्म लिया, उस मालिक को ना पहचान के दिया, सबके लिए वक्त निकाल लिया, सारी दुनिया के लिए निकाल लिया, हर एक के लिए निकाल लिया, सारी जिंदगी में ना वक्त निकल सका तो खालिक के लिए ना निकल सका। ओह ये नेमते इतनी जिनको गिना ना जा सके, और इसका रवैया ऐसा कि इससे ज्यादा जालिम और नाशुकरा कोई नहीं। इसने तो अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी। सोचें आपके दो चार एहसानात के आगे ही कोई आपके साथ बुरा करे तो आप नाराज हो जाएं, उसे कता ताल्लुक कर लें। चाहिए तो ये था कि वो रब भी नाराज हो जाता और सप्लाई कट कर देता, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, तुम्हारा पानी बंद, तुम्हारा खाना बंद, तुम्हारा रिस्क बंद। तुमने क्या समझा हुआ है? जुल्म और कफार का तो यही होना चाहिए ना, हम तो ऐसे ही करते हैं। मगर वो गफूर और रहीम है, फिर वो दरगुजर करता है, जाने देता है, रहम करता है, फिर वो दिए चला जाता है। उस रब की शान देख ले, वो दरगुजर का रवैया रखता है, माफ कर देता है। और जो शुक्रगुजारी करते भी हैं वो भी थोड़ी इतनी कर सकते हैं जितनी होनी चाहिए, तो उतनी नहीं कर रहे तो वो भी तो एक कमी है ना। उस मालिक का हक था कि उसकी जितनी शुक्रगुजारी की जाए, नहीं कर रहे ना तो फिर इसका मतलब है कि कमी हुई ना। इसके ऊपर भी फिर इंसान तौबा इस्तगफार करता है कि अल्लाह उतना नहीं कर सका जितना करना चाहिए था। लेकिन इंसान कहता है मैं तो मानता ही नहीं खुदा को, उसे मुंह मोड़े रखता है, उसको छोड़े रखता है, उसे नाराज होता है, उसे बेतवज्जही बरतता है, गाफिल रहता है, सारी जिंदगी उसका नाम लेना गवारा नहीं करता, और वो अता किए जा रहा है, अता किए जा रहा है, अता किए जा रहा है, मोहलत दिए जा रहा है, मोहलत दिए जा रहा है। वो गफूर रहीम है, तुम फिर नहीं भी शुक्र करते ना। लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी एहसास हो जाए ना कि उस मालिक ने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए हैं, और तुम अपनी आखिरी सांस पे भी एहसास कर लो और तौबा कर लो, तो वो गफूर रहीम, ये है वो अल्लाह, ये है वो रब, जानना चाहते हो उसको, ये है कुरान जो बताता है तुम्हारा रब कैसा है। अल्लाहु यालमु मा तुसिरून व मा तुलिनून, वो सब जानता है जो करतूत तुम करते हो और जिनको जाहिर करते हो, जिनको छुपाते हो। لوگوں سے چھپ کے جو کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اوپر والی بات کی کنٹینیوشن کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, جس کو بھی پکارتے, کوئی فرشتہ ہے یا کوئی نبی ہے یا کوئی بھی ہے, انہوں نے لا یخلقون شیئا, کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی, کوئی بھی چیز. وهم یخلقون, اور وہ سب پیدا کیے جاتے ہیں. جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ تو محتاج ہے نا, اس کا مطلب وہ خود تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا تھا, تو اس کا مطلب محتاج ہی ہوا نا, وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی مجھے پیدا کرے, تو وہ کسی کے کیا کام بنائے گا جو خود محتاج ہے. خود سوچیں, اور پھر بھی نہیں سمجھ آتی. اموات غیر احیاء, اور کیا ہے وہ؟ پہلی ان کی بات کیا بتائی کہ وہ نہیں پیدا کر سکتے, دوسری کیا بات بتائی وہ تو خود بےچارے پیدا ہوئے ہیں, تیسری کیا بات بتائی اموات غیر احیاء, مردہ ہیں زندہ نہیں. اب چاہے وہ بت ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے, یہ انسانوں کی نہیں, بت بھی تو انسان ہی تھے کبھی, وہ بھی تو زندہ ہی تھے, ہستیاں تھیں, اس کے بعد ہی مرے ہیں, تو وہ مردہ ہیں, وہ زندہ نہیں ہے. چاہے قبروں کی بات کر لو, چاہے بتوں کی بات کر لو, چاہے کسی کی بھی بات کر لو, جس بھی مردہ کو کوئی پوجتا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے, وہ تو اتنے بے بس ہیں, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہم اٹھیں گے کب اپنی قبروں سے, کب ہم یہاں سے نکلیں گے, وہ قبروں میں پڑے میں ہیں. اگر وہ اتنے قادر ہوتے چیزوں پہ تو قبروں میں کیوں ہوتے؟ دوسری جگہ فرمایا نا یہ مل کے ایک مکھی بنانا چاہے, مکھی بھی نہیں بنا سکتے, مکھی تو کیا بنائیں گے, مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے نا تو یہ وہ بھی نہیں واپس لا سکتے. اگر بیٹھے ہوئے ہیں پیر صاحب اور وہ کھانا کھا رہے ہیں اور مکھی آگے ان کے کھانے میں بیٹھ گئی اور کچھ اڑا کے لے گئی ہے, تو وہ چھین نہیں سکتے, اس کے پیچھے بھاگ کے اس کو پکڑ نہیں سکتے. دعف الطالب والمطلوب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا کمزور ہے مانگنے والا بھی اور جسے مانگا گیا, دونوں ہی. اس خالق, اس کائنات کے مالک کو چھوڑ کے تم ان ہستیوں کے پاس جاتے, تمہاری مت ماری گئی. جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ کوئی بھی ہے, اللہ کو چھوڑ کے وہ کوئی بھی ہستی ہے, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیوں نہ ہو, وہ بھی مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے. تو اس لیے توحید کا عقیدہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی وہ پیسے نہیں مانگتے, پیسے نہیں مانگتے, ہم ان کے پاس جا کے چیزیں مانگتے ہیں, وہ ہم سے پیسے تھوڑی دیتے, وہ پیسے کیوں مانگے گا؟ جس نے تمہیں ہی خرید لیا وہ پیسے کیوں مانگے گا؟ تم نے اپنا آپ ہی اس کو بیچ دیا, تمہارے تو پیسے خود بخود اس کے ہو گئے جب تمہارا عقیدہ اس کے اوپر اتنا پختہ ہو گیا. تو تم جس کو پکارتے ہو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں. پھر تیسری صفت یہ ہو گئی کہ وہ تو مردہ ہے, اور چوتھی یہ ہو گئی, اور پانچ نہیں یہ تھرڈ ہوئی, اور چوتھی یہ ہو گئی وما یشعرون, اور نہیں وہ شعور رکھتے ایانا یبعثون. اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے دلوں میں اتار دے, ہمیں شکر گزار بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمارے عقیدے کو درست فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے اور توحید کے ساتھ ہی ہمیں دنیا سے اٹھائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون